अध्याय 6 श्लोक संख्या 32। पिछली क्लासों में अध्याय 6 से ही अध्ययन किया जा रहा था, लगभग 31 श्लोक तक अध्ययन हुआ, चर्चा हुई, तो आज हम लोग 32वां श्लोक पढ़ेंगे। भगवद गीता है सबके पास, तो आप प्रयास कीजिए उच्चारण करने का। ये श्लोक संख्या है 32, अध्याय 6, पेज नंबर 225। आत्मा ओपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः। आत्मोपेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः। आत्मोपेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः। आत्मोपेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः। कोई बोलना चाहेगा? आत्मपेन सर्वत्र शबं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वो अर्थं योगी परमो मतः। और कोई? आत्मपेन सर्वत्र शबं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि दुःखं स योगी परमो मतः। शब्दार्थ, आत्मा अपनी उपमेन तुलना से सर्वत्र सभी जगह समम समान रूप से पश्यति देखता है यह जो अर्जुन हे अर्जुन सुखम सुख वा अथवा यदि यदि वा अथवा दुखम दुख सह वह योगी योगी परमः परम पूर्ण मतः माना जाता है। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपाद की। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की अनेक सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो आप पीछे एक बार दोहरा सकते हैं, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की श्रवण कीजिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण तीन प्रकार के भौतिक तापों यानी दुखों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान मनुष्य शिव कस्मिन प्रिय कृतम। भगवद गीता 18 अध्याय का 59वां श्लोक। दूसरे शब्दों में भगवत सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांत सुखाया सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्य के लिए भी एक के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत तथा भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में रुचि रखने वाले योगी में होता है। तो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वो उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भाई बनाने का प्रयास करता रहता है। श्री प्रभुपाद की तो देखिए पिछले इस अध्याय अध्याय कौन सा है, 6 का शीर्षक है ध्यान योग। तो इसमें भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि कितने प्रकार के योग हैं। इसको योगा लेडर कभी कभी कहा जाता है, योगी की सीढ़ियां। जैसे आप मंदिर में चढ़ते हैं, मंदिर में सीढ़ियां बनी हुई है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप पहले सीढ़ी पर पैर रखे हैं फिर डायरेक्ट आखिरी सीढ़ी पर पैर रखते हैं, सीढ़ियां बनाई हैं। तो भगवान ने ठीक उसी प्रकार ये योग बताए हैं कि कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, है ना, भक्ति योग। तो सीढ़ियां बताई किस प्रकार धीरे धीरे एक योगी एक योग से धीरे धीरे आगे वाले योगों में बढ़ता चला जाता है और अंत में कहाँ पहुँचता है, भक्ति योग में। तो इस अभी तक जो श्लोक का चर्चा हुई है भगवद गीता में, तो ध्यान योग तक पहुंचा गया। ध्यान योग के लगभग ये 10 श्लोक लगभग बाकी हैं जो ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, इसके बाद भगवत ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। तो अर्जुन को इसमें बता रहे हैं किस प्रकार एक ध्यान योगी की अवस्था है, ध्यान योगी किस प्रकार उसके जीवन में परिवर्तन आता है। तो ये इसके पिछले वाला जो श्लोक था उसमें जो बोल रहे हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो भगवान ये बोल रहे हैं योगी जब परमात्मा के हृदय में दिखता है, जैसे कि हम सुनते हैं ध्रुव महाराज जब अपने पिता से जब वृद्ध हो गए थे और तपस्या करने चले गए वन में, कि माता ने कहा जाओ भगवान को अगर पाना है, को अगर ये राज्य से ऊंचा राज्य पाना है तुम्हारे पिता से, तो जाओ जंगल में जहाँ विष्णु मिलते हैं, वहाँ उनकी पूजा करो, वहाँ की भक्ति करो, ध्यान योग करो और सो जाएगा। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पर कौन मिलता है उनको, नारद मुनि। नारद मुनि उनको शिक्षा देते हैं किस प्रकार ध्यान योगी की पद्धति का पालन करना है। तो इस प्रकार वो पालन करते हैं तो उनको क्या प्राप्त होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। हृदय में जो परमात्मा निवास कर रहे हैं हम सभी के हृदय में, उनका दर्शन करते हैं वो आँख बंद करे हुए, ऐसा लग रहा है कि सामने प्रकट है। तो जब अंतिम समय में जब उनकी योग साधना पूरी होती है, ध्यान योग पूरा पूर्ण होता है, सामने में कौन प्रकट हो जाते हैं, स्वयं भगवान परमात्मा सामने प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही वो शंख से उनके सिर पर स्पर्श करते हैं तो की आंखें खुलती है, सामने हम देखते हैं जिस परमात्मा का दर्शन कर रहा था हृदय में, सामने हम खड़े हैं। तो वास्तव में कौन है वो, तो ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन है। ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक निवसती अखिलात्म भूतो, गोलोक वृंदावन में धाम में वो रहते हैं। कहाँ रहते हैं भगवान, गोलोक वृंदावन में। और अखिलात्म भूतों का मतलब है वो हर एक स्थान में, हर एक कण में, हर किसी व्यक्ति के हृदय में भी निवास करते हैं। ये भगवान की महिमा है। जैसे आप सब लोग यहाँ पर हैं तो आप घर में नहीं है ना, यहाँ पर हैं। जब घर में होंगे तो यहाँ नहीं होंगे, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान यत्र यत्र तत्र सर्वत्र हर स्थान में है। तो वो भगवान अपने धाम में भी रहते हुए हर किसी के हृदय में निवास करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, परमात्मा। और अपना कौन स्वरूप, जनार्दन विष्णु के रूप में वो प्रकट करते हैं अपने आप को। तो यही भगवान बता रहे हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा अलग है, भगवान कृष्ण अलग है, विष्णु अलग है। ठीक है, ये एक दृश्य से अलग हो सकते हैं पर तत्व के दृष्टि से वो क्या है, एक ही है। भगवान पिछले श्लोक में यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मेरा सदैव चिंतन करता है। यानी जो परमात्मा ये सोच के कर रहा है कि परमात्मा और कृष्ण एक ही है, ऐसा सोचकर वो पूजा करता है परमात्मा की, वास्तव में किसकी पूजा कर रहा है, भगवान बोल रहे हैं मेरे कर रहे हैं, यानी कृष्ण की कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति जब इस स्तर पर पहुंच जाता है, यानी कौन सा स्तर है, जो पूर्ण योगी बन जाता है। आज के श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन वो पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों को कि उनके सुख और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। वास्तविक समानता का मतलब बताया गया है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसका वर्णन कर रहे हैं कि हम सभी को दुख और सुख, कितने लोग यहाँ पर जो हम कभी ना कभी दुखी हुए हैं, हाथ खड़ा कीजिए, सभी लोग हुए। कितने लोग हैं जो सुखी हुए हैं? बहुत कम लोग हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में बराबर आता है। फिर जब भक्त भक्त के जीवन में सुख और दुख आते हैं, पर धीरे धीरे जब वो पूर्ण योगी के स्तर पर पहुंच जाता है, तब वो ये देखता है कि दूसरे के जीवन में जो दुख आ रहा है, दूसरे के जीवन सुख आ रहा है, उससे अपनी दुख और सुख की तुलना करता है ना। जैसे मान लीजिए सड़क पर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, आप देखते हैं तो आपका हृदय विदीर्ण हो जाता है, ये सोचकर कि हाँ उसे कितना चोट लगा होगा, तो कितना कष्ट हो रहा होगा, लगता है ना उसे। क्यों लगता है? कि हमें भी कभी चोट लगा, हमें भी कभी कष्ट हुआ है। तो यही कारण है कि भक्त भी सोचता है, पर भक्त का सोचने का ढंग अलग होता है। वो क्या सोचता है कि इनके दुखों का कारण सिर्फ एक ही है कि ये भगवान से दूर है। कृष्ण जो मिशनरी है वो प्रीचिंग करने आते हैं तो आपके घर में नॉक नॉक करते, दरवाजा खटखटाते हैं, और सबसे पहले दरवाजा खोलते हैं तो पूछते हैं कि आप दुखी हैं? हर कोई व्यक्ति बोलता है दुखी हूँ, कोई व्यक्ति संसार में दुखी नहीं है, तब बोलते हैं दुखी हूँ, क्योंकि ये संसार क्या है? दुखालय है, दुखों का आलय, जहाँ की दुखी दुख भरा है। और हम क्या किसमें लगे हुए हैं? दुखालय क्या बनाने में? सुखालय। जैसे कि एक व्यक्ति जाता है इलेक्ट्रिक की शॉप में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की शॉप में जाता है, वहाँ बोलता है भाई साहब मुझे कपड़ा चाहिए एक मीटर। तो देखिए भाई साहब, बोलते यहाँ पर कपड़ा नहीं मिलता, ये इलेक्ट्रिकल शॉप है, यहाँ पर बल्ब मिल जाएगा, ट्यूबलाइट मिल जाएगी, वायर मिल जाएगा। बोले नहीं नहीं मुझे यहीं से कपड़ा लेना है और आपको देना पड़ेगा। तो बोले देखिए आप समझदार हैं, अच्छे पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं, आप गलत जगह में आ गए, कपड़े की दुकान बगल वाली है। बोले मुझे यहीं से कपड़ा चाहिए। जब ऐसा बहुत जिद करता है तो वो क्या करता है, बेल बजाता है, चार पांच आदमी को बुलाता है, बोलते हैं पागल को बाहर कर दो। हम भी यही कर रहे हैं, भगवान ने स्टैंप लगा दिया तो क्या कह दिया, दुखाला है। और हम लोग क्या किसी प्लान कर रहे हैं यहाँ पर सुखी है ना, एक दिन सुखी हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, ये बस ये मेरे पास गाड़ी आ जाए मर्सिडीज मैं सुखी हो जाऊंगा, या फिर एक बंगला आ जाए मेरे पास मैं सुखी हो जाऊंगा, हाँ या बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, गारंटी है। हर एक दुख के बाद एक और दुख बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा हमारा। क्योंकि एक चीज को हम लोग भूल गए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक समझ ली जग है जिसमें पानी दे रहे हैं पौधे में, पौधे के एक एक पत्ते को पकड़ पकड़ के पानी देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पौधा अच्छा हो जाए, बड़ा हरा भरा हो जाए। पर ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? हमको कहाँ पानी देना चाहिए? जड़ में पानी देना चाहिए। हम सब समझदार हैं कि जड़ में पानी देना चाहिए, लेकिन संसार में बताया जाता है कि वास्तविक किसी की सेवा करनी है, भगवान की करनी, हम ये नहीं सोच पाते। यही कारण हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण संसार में यही है कि व्यक्ति भगवान की सेवा न करके अन्य किसी की सेवा कर रहा है। ये जब भक्त देखता है दूसरे संसार में दुखी लोगों को, क्योंकि जो भक्त होता है वो पर दुखा दुखी होता है। कैसा होता है? पर दुखा दुखी, दूसरे को दुखी देखकर दुखी दुखी हो जाता है। और बाकी संसार में कर्मी लोग जो हैं, संसार के लोग कैसे हैं? पर दुखा सुखी। पड़ोसी के यहाँ चोरी हुई, बोले अच्छा हुआ, बहुत पैसे इकट्ठे कर रहा था, कंपटीशन था हमारे से, है ना। उसे घर में जाकर बहुत बुरा हुआ आपके साथ, मन में सोच रहा है बहुत ही अच्छा हुआ, जल्दी चोर पकड़ा जाएगा, मन में सोच रहा होगा चोर को पकड़ाना नहीं चाहिए, दोबारा चोरी होनी चाहिए। ये पर दुखा सुखी। या कभी मान लीजिए लॉटरी लग गई पड़ोसी की, है ना, पर सुखा दुखी। लॉटरी उसके यहाँ कैसी लॉटरी लगी? पत्नी बोलती है कि आप तो कुछ करते नहीं हो, देखो उनके यहाँ मर्सिडीज गाड़ी आ गई, हमारे पास 800 है, इसी से काम चल रहा है, खटारा लेके बैठे, बैलगाड़ी से भी खराब चलती है। आप अगर कल बड़ी गाड़ी लेकर नहीं आएंगे, खाना नहीं बनेगा, आपको होटल में खाना पड़ेगा, है ना। ये उसके बोलते हैं पर सुखा दुखी। गाड़ी उनकी आई है, उनके यहाँ सुखी सुख हो गया है, हमारे यहाँ कलेश, हमारे यहाँ टेंशन, खाना चूल्हा नहीं जल रहा, बताइए उनके यहाँ पकवान बन रहे होंगे, हमारे यहाँ चूल्हा नहीं। पर सुखा दुखी। पर भक्त कैसे होता है? किसी को भी दुखी देखता, थोड़ा सा भी दुखी देखता है, उसकी पीड़ा होती हृदय में, ये दुखी क्यों है, मुझे पता है ये दुखी क्यों है, क्योंकि भगवान से दूर है। क्यों सोचता है सब? क्योंकि उसने परमात्मा का दर्शन कर लिया हृदय में, उसको पता है कि मैंने परमात्मा का दर्शन किया है, इसलिए आज मैं सुखी हो गया हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है, संसार में रहते हुए भी मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने परमात्मा का दर्शन किया है। वो क्यों दुखी है? क्योंकि उसने परमात्मा का दर्शन नहीं किया है। और आगे वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं लेकिन जब सुख का कारण क्या है तो भगवद गीता में इसका श्लोक बताया गया है। क्या बताया गया है कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञत्वमान शांति मृक्षति। तो उसको बोलते हैं शांति सूत्र, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं शांति सूत्र। अगर कोई चीज शॉर्ट में बताई जाए कि शांति का क्या तरीका है, शांति कैसे प्राप्त की जाए, हम सब पीछे पड़े हुए ना, पीस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, उसके क्या तरीका है, तीन चीजें हमेशा हम ध्यान रखिए। क्या भगवान बोलते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। भोक्ता राम मतलब भोक्तार अहम, बहुत सरल संस्कृत है, भगवान जो इतना कठिन लैंग्वेज नहीं देना चाहते कि उनको समझना है। बोलते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या, किसी न किसी रूप में हम तपस्या कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में यज्ञ कर रहे हैं। कोई बोलते हैं प्रभु जी हम तो ऑफिस जाते हैं 12 घंटे जॉब करते हैं आ जाते हैं, कोई यज्ञ तपस्या नहीं कर रहे हैं। तपस्या नहीं है 12 घंटा, 12 घंटा जॉब करना, अपने शरीर का खून बर्न करना, ब्लड बर्न करना, अपने ब्रेन को यूज करना, 12 घंटे डब्बे के सामने बैठे रहना, उसको देखते रहना, तपस्या नहीं है, तपस्या है। और उसके बाद ट्रैफिक में फंसे रहना, और पूरे दिन भर में खाने का जो टाइम होता है 2 टाइम खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, ज्यादा ज्यादा आराम से सो भी नहीं सकते, है ना, कितना समस्या है। ये भी तपस्या है, तपस्या सबको करनी पड़ती है, लेकिन उसका भी, उसके भी भोक्ता कौन है, उस किसी भी प्रकार की तपस्या है, किसी भी प्रकार का यज्ञ है, तो सबके भोक्ता कौन है, भगवान कृष्ण। ये भूल जाते हैं, भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के कौन है, मालिक है। तो ये प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि वो सारे भूमि, हमने एक लैंड खरीद लिया है ना बड़ा सा 200 गज जमीन, स्क्वायर गज जमीन, अब ये मेरी है, मैंने इसके 3 करोड़ रुपए दिए हैं, बिल्डिंग मेरी है। जैसे हम सोचते हैं मेरी है, हम दुखी होना शुरुआत हो जाता, हमारे जीवन में दुख आना समाप्त हो जाता है। सारे जैसे कई ऐसे भी होते हैं, जैसे कि भागवत में इसका वर्णन है, अभी हाल ही में हमने सुना था कि कई ऐसे राजा हुए जो अपने राज्य को त्याग कर जंगल चले गए, ये सोचकर कि हमने त्याग कर दिया। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि जंगल भी भगवान का है और महल भी भगवान का है, तो आपने क्या त्यागा। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक धन को त्याग देता है, 1 करोड़ पर त्याग देता है, फिर जाके 1 करोड़ उठा लेता है, तो बोला मैंने 1 करोड़ त्याग दिया, क्या उसने त्यागा नहीं, सारा संसार की वस्तु किसकी है, तो फिर हम क्या त्याग रहे हैं। तो बोलते हमने सारा जीवन त्याग दिया, हमने ये त्याग दिया, कुछ नहीं त्यागा हमने, असली जो हमारे पास कुछ हमारी है, बोलने से कि वो चीज है, वो भी अहंकार है, जो मिथ्या अहंकार है, वो हमारा है, उसको त्यागना पड़ेगा, उसको त्यागना वास्तविक वैराग्य है। क्या मिथ्या अहंकार है कि मैं शरीर हूं, मैं अपने परिवार का सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं, मेरा शरीर है, मेरा देश है, मेरा दिल्ली, मेरा गांव, मेरा भारत, ये सोचना जो है ये मिथ्या अहंकार है, ये हमारा अपना है, इसको त्यागना पड़ेगा, इसे हमने पैदा किया, इसे जब त्यागते हैं तो हम सुखी होना प्रारंभ कर देंगे। सब कुछ भगवान का है तो कुछ खोने का डर नहीं है, हम दुखी क्यों है, बैंक में 1 करोड़ रुपए है, घर में नींद नहीं आती है कि डाका ना लूट जाए, वहां को चोरी ना कर ले। अभी भी जाइए मार्केट में ऐसे नोट मिलेंगे जिसमें अभी पिन लगा हुआ है, और रिजर्व बैंक ने कभी कब से बता दिया पिन नहीं लगना, इसका मतलब बैंक में गया पैसा गया ही नहीं, मार्केट में ऐसे घूम रहा है, या फिर किसी के घर में छुपा कर रखा था लॉकर में, किसी ने घर में लॉकर में 1 करोड़ रुपए छुपा कर रखे हैं, क्या उसको नींद आएगी, कुछ चैन मिलेगा। हम कितने कर्म करते हैं, हम पाप करते हैं, तो पापी व्यक्ति चैन से नहीं बैठ सकता। तो यही हम रूपा जी तात्पर्य बता रहे हैं, सारे लोगों का स्वामी कौन है, भगवान। जब ये हम फील करना स्टार्ट कर देंगे, इसका अनुभव होने लगेगा दैनिक जीवन में, तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, किसी चीज को खोने का भय नहीं रहेगा। और आगे क्या बोलते हैं, सुहृदयम सर्वभूतानाम। सुहृदय मतलब क्या होता है, हितैषी, वेल विशर, सबका फ्रेंड। हम चाहते हैं हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में कोई मित्र हो, हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आए तो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर हो, तुरंत खड़ा हो। भगवान परम हितैषी भी हैं, कैसे, कोई बोलेगा प्रभु जी हम तो सब कुछ दुखी होते हैं, पिछली बार हमारे घर के पड़ोस में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था, कोई आया नहीं, भगवान तो आए नहीं वहां पर, भगवान कहाँ रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, अभी सुना था हमने परमात्मा रूप में। किसी के घर का कोई बच्चा है, अगर मान ली किसी गटर में गिर जाए, मल में गिर जाए, तो उसे माता उसको छूती भी नहीं है, तो एक बाल्टी पानी डालेगी और नहा ले बेटा, कैसे छूंगे, है ना, उसका स्वयं खुद का बेटा होगा, या गंदगी में होगा तो छूती नहीं है, सोचती है। लेकिन भगवान एक सुअर के हृदय में भी रहते हैं, सुअर जो गटर में दिन रात रहता है, फर्क में तो ऐसी नहीं है, कितने भी योनियां परिवर्तन कर लें, कितनी भी निम्न योनियां चल रहा है, कॉकरोच चल रहा है, मल में रहने वाले कीड़े की योनि में भी चल रहा है, लेकिन भगवान हमारे हृदय में विराजमान रहते, उस समय भी उनके हृदय में रहते, परम में तैसे भगवान, भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, पत्नी, बच्चे सब साथ छोड़ देंगे, याद रखिए भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान बोल रहे हैं सुहृदय सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम का मतलब यही है सारे जीवात्मा, सारी योनियां, ऐसे नहीं बोले सिर्फ मनुष्य के हृदय में रहता हूँ, जानवरों के हृदय में नहीं रहता हूँ, मैं जिस सुअर के हृदय में नहीं रहूंगा वो तो गंदगी फैलाता है, नहीं, सबके हृदय में रहता है। तो ये कोई व्यक्ति जान जाता है तो परम तेजी बन जाता है। इसका मतलब है सुखी बनने का, दुखी बनने के बाद दुखी बताए, दुखी किस लिए थे दुखी, क्योंकि हम भगवान को भूल गए। सुखी कैसे बन सकते हैं, तीन फॉर्मूला है, भगवान भोक्ता है, भगवान सारी चीजों के मालिक है, तीसरा क्या है सुहृदय, भगवान सबके हितैषी हैं। ये तीन चीज हम लोग जान जाते हैं, भगवान बोलते हैं जित्वा मां अंतिम रक्षति, ऐसा कोई व्यक्ति जान जाता है उसको शांति प्राप्त होती है। तो ये जब जिसका ज्ञान एक भक्त को हो जाता है कि दुखी क्यों है और सुखी क्यों कैसे हुआ जा सकता है, तो वो सबके दुखों को अपने दुख सुख दुख से रिलेट कर पाता है और उसका हृदय दया से भर जाता है, दया से भरने के कारण वो प्रचार करने की भावना अंदर से जागती है। जैसे मान लीजिए या तो कोई आनंद मिले, जैसे आप मान लीजिए किसी शॉप पर जाते हैं हल्दीराम का रसगुल्ला खाते हैं, ठीक है, बड़ा स्वादिष्ट रहता है, तो क्या करते हैं अपने फ्रेंड को बताते हैं आज मैंने रसगुल्ला खाया, गजब का रसगुल्ला था, बहुत अच्छा, बहुत मीठा, बहुत फ्रेश लग रहा था, मैं तुम्हें भी खिलाना चाहता हूँ, तुम भी चलो आओ, उसे खिलाते हैं लोग खाओ। आप बताइए हल्दीराम ने कोई कमीशन दिया उसे, कमीशन दिया नहीं, फ्रेंड ने कोई कमीशन दिया नहीं, कुछ नहीं मिला उसे, फिर उसने क्यों बांटा, किस लिए बांटा, क्योंकि उसे अच्छा लगा था। जब हमें कोई चीज अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं अपने प्रिय मित्र को, अपने प्रिय स्वजनों को ये चीज देते हैं, वस्तु देते हैं कि आप भी इसे ग्रहण कीजिए, इसका आनंद उठाइए, मैं भी आनंद उठा रहा हूँ। वैसे ही भक्त जब इस स्तर पर पहुंच जाता है, उसमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा का दर्शन कर लेता है ध्यान योग के माध्यम से अंतिम समय में, तो क्या करता है प्रचार करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी पहले लाइन में बोल रहे हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है, यानी कृष्ण भावना भावित में है, कृष्ण भावना भावित हो चुका है व्यक्ति, सबसे ज्यादा उसके अंदर में दया होती है। वैसे तो शास्त्र में बताया गया दया का जो स्तर होता है मध्यम अधिकारी का होता है, दया करने के लिए बहुत उन्नत भक्त बनना जरूरी है, पर हम संस्था में देखते हैं स्कॉन की संस्था में आने पर हर एक व्यक्ति जो नया भी जुड़ा है उसको एक दिन भी हुआ है वो भी भगवान के बारे में बताता है। क्यों बताता है, क्योंकि अगर हम मध्यम अधिकारी के स्तर पर नहीं है तो प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर में नेचुरल दया नहीं है, नेचुरल स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर दया नहीं है, हृदय में किसी को देख कर दया नहीं आती किसको प्रचार करें, बोलते हैं पढ़ा है तो पढ़े रहने दो। तो दया कैसे आएगी, आदेश से, तो गुरु आदेश देते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, हमारा गया गुरु है तारे देश जारो देखो तारे को कृष्ण प्रदेश, चैतन्य महाप्रभु ने कहा जिसको देखो प्रचार करो, तो ये आदेश में शक्ति है, उस आदेश की शक्ति को प्राप्त करके जब हम प्रचार में लगते हैं तो हमारे हृदय में क्या आ जाता है, धीरे धीरे दया प्रारंभ हो जाती है, ये प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं। और वो चाहता है कि इस सुख को जो वो कृष्ण भावना का व्यक्ति जो सुख प्राप्त कर रहा है, इस सुख को मैं सबको बांट दूंगा, अपने पास रिसीव नहीं रखूंगा, मैं हर किसी को बता दूंगा कि मैं कैसे सुखी हुआ हूँ, ये राज की बात है। ऐसे एक घटना आती है, सच की घटना है, मुंबई में हुआ था, मुंबई के एक भक्त ने बताया था, दो मित्र थे, दोनों की एक ही बीमारी थी कैंसर की, तो वो काफी इलाज कराना चाहते थे काफी दिनों से, फिर उनकी हिम्मत हार गया, कोई इलाज नहीं हो रहा था, दोनों बोले चलो एक साथ ही रहेंगे, जब मरना है तो साथ ही मरेंगे, कोई चिंता नहीं करने की बात नहीं। तो उनके माँ बाप उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि चलो बेटा कोई बात ऐसी मरने वाले कोई बात नहीं, हमारे साथ रहो, हम भी चाहते हैं कि बेटा हमारे साथ रहे अंतिम समय में, अपने अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं। तो एक व्यक्ति को अचानक से ट्रेन में एक दूसरा डॉक्टर मिलता है, तो पूछता है कि तुम्हारे शरीर को देख लेते हो मैं भयंकर बीमारी, तो बोलते हैं हाँ मुझे कैंसर है, तो बोलते हैं मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो आपके इलाज कर देगा, आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, आप चलिए उनके पास, बोलते हैं मैंने सारा इलाज कर दिया मुझे कोई इलाज नहीं मिलता, मैं नहीं ठीक हूँ मैं मर जाऊँगा, बोलते नहीं आप चलिए मैं तुमको मिलाता हूँ, वो लेकर गए कहीं बहुत दूर गाँव में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, वहाँ दिखाया, इलाज हो गया, ठीक हो गए, ठीक होना प्रारंभ हो गए, उनको लगा मैं ठीक हो रहा हूँ और अच्छे होने प्रारंभ सचमुच हो चुके थे। उन्होंने क्या किया, तुरंत कॉल किया अपने फ्रेंड को, क्यों कॉल किया, क्योंकि उसको भी सेम बीमारी है और ये ठीक होने का तरीका यहाँ पता चल गया है। तो अपने आप नेचुरल दया आएगी, नेचुरल प्रचार करने की इच्छा होगी। ठीक वैसे ही अगर एक व्यक्ति को पता चल रहा है कि मैं सही स्थान में आ चुका हूँ, मेरा इलाज हो रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो क्या करेगा, तुरंत लोगों को बताएगा, अपने स्वजन को, बहुत अच्छा जगह है, मैंने अच्छा सब कुछ पाया है, मैं देखो चैंटिंग कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको संतुष्टि हो रही है, पहले से मैं दुखी कम रहता हूँ, मेरे जीवन में सुखी सुख आ गया है, खुशी आने लगी, आप प्लीज इससे जुड़िए, आप भी यही काम करिए, आप भी हरे कृष्ण मंत्र जपिए, ऐसा करता है क्योंकि उससे फायदा हो चुका है। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं। और दूसरी बात की वो सोचता है कि पंडिता समदर्शन, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पंडिता समदर्शन पांचवें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया पहले कि वो सबको एक ही स्तर पर देखता है। एक ही स्तर देखने का मतलब नहीं है कि एक ही समान दिखते हैं, ये सब जैसे ये तो मायावाद फिलोसफी है। मायावाद में क्या होता है, मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान, हम सब भगवान है। तो समदर्शिना का मतलब नहीं है, समदर्शिना मतलब एक समान देखने का मतलब होता है सबके हृदय में परमात्मा को देखता है, क्योंकि उसने परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया। तो सोचता है कि इनके हृदय में परमात्मा है, इनके हृदय में परमात्मा, इनके हृदय में परमात्मा है, इसे सभी एक ही स्तर पर है, सभी एक जीवात्मा, सभी सोल है, सभी भगवान के सनातन अंश है, सबके हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं, इसलिए ये सभी एक है। कौन? गाय, हाथी, चंडाल, वृक्ष, पौधा, चाहे कितने भी प्रकार के जीवात्मा है, सब क्या है, एक ही स्तर पर है, सबको एक ही समान देखता है, इसलिए वो भेदभाव नहीं करता है। और प्रचारक की भी यही स्थिति होती है, प्रचार करने जाता है तो ये नहीं सोचता कि कौन किस स्तर पर है, इसको बोलना चाहिए, इसको नहीं बोलना चाहिए, सबको बोलता है। हाँ, जब अब जैसे अभी पिछले महीने जब उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हाँ काफी लोगों ने किया था। तो आप लोगों ने जब बुक्स दिया किसी को तो पूछा कि आप किसी किस जाति हैं, किस धर्म के हैं, कहाँ के रहने वाले, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं, नहीं पूछा। हो सकता है उन्होंने बाद में बताया हो, लेकिन आपने कभी नहीं पूछा। यही कारण होता है जब कोई चीज बांटी जाती है, सच्चे हृदय से सुख बांटा जाता है, तो ये नहीं पूछा जाता कौन से जात धर्म किसी कास्ट ग्रीड के हैं, कलर के, कुछ कुछ नहीं पूछा जाता। ये नेचुरल कंपैशन होता है, नेचुरल दया होती है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वही है, तो ये इसको बोलते हैं पंडिता समदर्शिना। यानी वो सोचता है कि नहीं, सारे लोग एक ही स्तर पर हैं, किस स्तर पर, सभी भगवान के सनातन अंश हैं। ममे वांस जीव लोके जीव भूत सनातन मनस स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान बोल रहे हैं मेरे अंश है, मम एव ही अंशो, मेरा ही अंश है, बोल रहे हैं भगवान। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये इटर्नल है, शाश्वत है जीवात्मा, ये आत्मा अनेक अनेक योनियों में भटक रही है, प्रकृति स्थानी कर्षति, और प्रकृति से क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है ना, जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम सब जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हर रोज सोचते हैं कि हम लोग कुछ होगा आज, नहीं तो पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, कैसी स्थिति है, हमें धन कमाना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, ये शायद हमें बचाएगा, ये प्रयास कर रहे हैं, हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है प्रकृति में रह के। पर यहाँ बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति भगवत भक्ति के स्तर पर ऊंचा उठ जाता है तो समझ जाता है कि सभी आत्माएं जो भगवान के सनातन अंश हैं, इसलिए इनको एक बार कृष्ण से मिला दिया जाए तो उनके जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा, इनका दुख कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसा कि मेरा है, ऐसा वो फील करता बताता है। तो प्रचारक के लिए कई बातें, जैसे कि यहाँ पर प्रचारक की बात बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक जो कृष्ण के हरिनाम का प्रचार करता है, कृष्ण भावनाम का प्रचार करता है, उसके कई गुण होना चाहिए, बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार, इस संस्था में सिर्फ प्रचारक, हमें सिर्फ भक्त नहीं बनना है, हमें प्रचारक भी बनना है, कि बोलिए हमको सब कुछ मिल गया है, हम बैठ के भजन करेंगे हरे कृष्णा, बाकी सब अपने अपने घर में जाइए, अपने अपने जाइए, ऐसे नहीं। प्रभुपाद जी बोलते नहीं, आपको जो चीज़ मिला उसको बांटिए, इसलिए हर एक व्यक्ति को क्या बनना है, प्रचारक बनना है, जो मुझे मिला है मुझे बांटना है, ऐसा सोचना है। लेकिन बांटने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, वो क्या है, जैसे भक्त के जीवन में, प्रचारक के जीवन में जो कृष्ण की लीलाएं हैं, जो कृष्ण के बारे में सुनते हैं, जैसे भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जो हम सुनते हैं वह वास्तव में क्या है, डाइट है, भोजन है, क्या है वो, प्रसाद, हमारा भोजन है। अगर हम भगवान की लीलाओं का नित्य श्रवण करेंगे तो हमारा जो हृदय जो है कृष्ण भानुअमृत से भरा रहेगा। लेकिन क्या सिर्फ अगर हम लोग भोजन करते रहें और एक जगह बैठे रहें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, क्या आवश्यकता होती है भोजन के साथ, परिश्रम, परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो परिश्रम बताया गया सेवा, अगर व्यक्ति कृष्ण लीला सुनता है, कृष्ण कथा सुनता है, लेकिन सेवा नहीं कर रहा है, तो उसका आनंद नहीं आएगा। कुछ दिन बाद वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, स्पिरिचुअली डिजीज हो जाएगा। ठीक है, तो परिश्रम करना जरूरी है। शरीर में जो अपने भोजन किया है उसको पाचा पचाने के लिए परिश्रम करना जरूरी है, इसलिए सेवा की आवश्यकता है। सेवा से क्या होता है, ह्यूमिलिटी आता है, प्रचार करने की इच्छा बढ़ती है। और फिर भी संसार में हम लोग कुछ ना कुछ बीमार होते रहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, दवाई भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, है ना। तो मेडिसिन क्या है, हमारी साधना है, चैंटिंग रीडिंग हियरिंग, ये हमारी साधना है, चैंटिंग हियरिंग रीडिंग, जो हम लोग अपनी मिनट 16 माला, कितने लोग 16 माला करते हैं यहाँ पर, कितने लोग जो 8 से 16 के बीच में है, और कितने लोग हैं जो 1 से 8 के बीच में, काफी लोग। तो आप जल्दी से जल्दी 16 माले के तौर बढ़ी है, और ये नियमित रूप से करिए। जैसे डॉक्टर आपसे जब बोलता है कि डाइट लीजिए, बोलते हैं डॉक्टर साहब पूछ रखिए, डॉक्टर साहब इसको कैसे खाना है, कभी भी जब मन करे खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ऐसे ही बोलता है, क्या बोलता है, नियमित रूप से इसका टाइम बताता है, इतना बजे खाना है, इतनी डाइट लेनी है, इसके साथ लेना है और इसके साथ नहीं लेना है, बताता है। तो हमारे हमारे जीवन में भी वैसे ही है, हमारी मेडिसिन क्या है, मिनिमम 16 माला करना। ठीक है, अभी हम लोग कमजोर हैं, इसके साथ डाइट नहीं ले पा रहे, प्रॉपरली दवाई नहीं ले पा रहे, धीरे 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 16 माला तक पहुंच जाएंगे। ग्रंथों का अध्ययन करना, श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिदिन अध्ययन करना, भागवत का अध्ययन करना, श्रवण करना, लेक्चर सुनना, जैसे आप लोग लेक्चर सुनने आते हैं सैटरडे को, हाँ, और मंडे को आते हैं, या मंदिर में भागवत कक्षा सुनने आते हैं, तो ऐसे कथा भी सुनने आना चाहिए, और साथ साथ में प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स हैं उनको भी सुनना चाहिए। अगर ये डाइट, आपका भोजन तो ले रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, साथ साथ में अगर दवाई नहीं लेंगे, तो हो सकता आगे जाके बीमार होना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे ज्यादा बीमार हो जाएंगे। डाइट भी जरूरी है, और डाइट के साथ, दवाइयों के साथ, परिश्रम के साथ एक चीज और जरूरी है, वो क्या है, परहेज, है ना। क्या नहीं खाना है डॉक्टर बताता है, एक अच्छा डॉक्टर हमेशा ही बताएगा इसकी वजह से आप बीमार हैं, ये मत खाइए। शुगर का पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाई दे दी, परिश्रम करने बता दिया, खाना बता दिया, डॉक्टर साहब क्या लेना है, सब लीजिए, सब खाइए, आजकल डॉक्टर यही बोलते हैं ना, सब खाइए, क्योंकि वो बीमारी रहेगा तभी तो आएगा उसके पास, अगर वो ठीक हो जाए तो कैसे आएगा। डॉक्टर साहब मैं ठीक हो रहा हूँ, अच्छा कैसे ठीक हो रहे हो, मैंने ये परहेज अपने मन से शुरू कर दिया है, मैं पहले ज्यादा चीनी लेता था, आजकल नहीं ले रहा हूँ, नहीं चीनी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, चीनी खाओगे तभी तो मेरे पास आओगे, है ना। तो ये आजकल का प्रचार है, इसका प्रोपेगेंडा है डॉक्टर का, असली डॉक्टर क्या बोलता है, बताता कि क्या रीजन है, क्या कारण है। जैसे गुरु भी एक डॉक्टर है, स्पिरिचुअल डॉक्टर, है ना। स्पिरिचुअल डॉक्टर का काम क्या है, हम सोचते हैं गुरु के पास जाएंगे, गुरु या फिर भक्त होंगे, हमारी तारीफ करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, आप महान भक्त हैं, आपके कमल नयन हैं, कमल लोटस फीट हैं, ये सब बोलेंगे, हम खुश हो जाएंगे। नहीं, साधु का काम क्या है, भक्तों का काम क्या है, हमारे अहंकार को काटते हैं, सही चीज़ बता देते हैं। देखिए प्रभु जी, आप चूंकि माला अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका भक्ति मन नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर भी ऐसे होता है, डॉक्टर का काम यही होना चाहिए, सही बात बताना चाहिए, आप ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये डाइट सही नहीं ले रही, ये लीजिए, और ये मत लीजिए बिल्कुल, मैंने मना किया था, फिर भी आप ले रहे हैं, आप ऐसा लेंगे तो ठीक नहीं हो जाएंगे। तो परहेज भी जरूरी है। तो वैसे ही भक्तों के लिए क्या परहेज है, सब बताएगा, चार नियम का पालन करना। चार नियम क्या है, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, परपुरुष गमन नहीं करना, ये आपके लिए परहेज है। अगर हम सब ये परहेज नहीं करेंगे तो हम कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इधर दवाई भी लेते रहें, खाते भी रहें, परिश्रम भी करते रहें, और जिससे बीमारी वो भी लेते रहें, है ना, तो ठीक होने वाले। जैसे कि मान लीजिए, प्रभुपाद जी बताते हैं, कोई व्यक्ति शराबी है और शराब के कारण उसका लीवर पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है आप शराब पीना बंद कर दो, मैं दवाई दूंगा, गारंटी तुम ठीक हो जाओगे। वो घर आता, दवाई लेता है और दारू भी लेता है, दवा और दारू दोनों चल रही है उसकी, है ना। क्यों बोलते, किसी ने कहा है दवा दारू होने से ठीक हो जाएगा, तो दवा दारू दोनों ले रहे, तो कभी ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ विष पी रहा है, दूसरी तरफ अमृत, विष और अमृत, कभी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हमें परहेज पे जरूरी है। पुराने आयुर्वेदिक में ऐसा बताया जाता है कि کہ بنا پرہیز کے کوئی دوائی کام ہی نہیں کرتی. لیکن آج ڈاکٹر بولتے ہیں ساری دوائیاں اچھی کام کریں گی, چاہیے کچھ بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے, سب کھائیے ہے نا, جتنے بھی پرکار کی چیزیں سنسار میں کھائیے. پہلے لوگ تھوڑے ڈھنگ کی چیزیں کھاتے تھے, اب اٹپٹانگ چیزیں کھاتے ہیں, برگر پیزا آ گئی مارکیٹ میں, اس کو کھاتے ہیں جنک فوڈ ہے نا, پرانا بوٹل میں رکھا ہوا پانی ہے نا, اس میں تھوڑا کلر ملا دیتے ہیں, سوڈا ملا دیتے ہیں, ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں, ہم لوگ پی رہے ہیں پرائٹ, تو واسطے میں پرانا پانی ہے. ویسے پرانا کھانا ہے, چار دن پانچ دن پرانا برگر پیزا رہے گا, کیونکہ وہ فرائڈ آئٹم ہے اس لیے, یا بریڈ اس لیے خراب نہیں ہوتا ہے, آپ کو گرم کر کے دے دیتا ہے, آپ کو لگتا ہے سب پکا کے نکالا اس میں, پتہ نہیں کتنے دن پرانا ہوگا, وہ جنک فوڈ ہے, ایسے ہیلتھ صحیح نہیں ہونے والا, آیوروید یہی بتاتا ہے. تو یہ جب جو پرہیز بتایا گیا, جب پرہیز کا پالن کریں گے تو ہمارا سوستھ ہونا پرارمبھ ہو جائے گا. تب کیا ہوگا, ہمارے اندر سے جو انرتھ ہیں وہ تیاگ, جیسے شریر ہم پریشرم بھی کرتے ہیں, ڈائٹ بھی کھاتے ہیں, دوائی بھی لیتے ہیں, پرہیز بھی کرتے ہیں, پر ہم شریر سے مل بھی سرجن کرتے ہیں, پسینے کے روپ میں مل تیاگتے ہیں, ہے نا. تو وہ مل کیا ہے, اپنے آپ نہیں نیچرل نکلیں گے, وہ کیا ہے انرتھ نکلیں گے. جب ان سب نیموں کا چاروں کٹورتا سے پالن کریں گے تو ہمارے جیون سے انرتھوں کی ضرورت ہی ہونا پرارمبھ ہو جائے گا, پھر شانتی لگے گی, آنند آئے گا جیون میں. ایسے ایک بار لیکچر سن رہے تھے, اس میں بتایا گیا ویکتی بھوگ سے زیادہ تیاگ کی چنتا کرتا ہے. کسی اگر کسی گھر کرائے پر گھر لینے جاتا ہے تو وہاں وہ چیک کرتا ہے پہلے باتھ روم ہے کہ نہیں ہے, ٹوائلٹ ہے کہ نہیں ہے, کچن ہے کہ نہیں, وہ چل رہا ہے, ہو سکتا ہے باہر سے کما لے کر کھا لے, لیکن اگر ٹوائلٹ نہیں تو کیا ہوگا, صبح سارا گڑبڑ ہو جائے گا نا. تو ویسے تیاگ کی چنتا زیادہ ہوتی ہے, اور تیاگ جتنا تیاگ کریں گے اتنا آنند ہوگا, جیسے شریر سے مل تیاگ تو آنند آتا ہے, ہم کو شانتی ملتی ہے, کھانے سے جو آنند نہیں آتا اس سے زیادہ مل تیاگ میں آنند آتا ہے, یہ شاستر بتاتا ہے, آیوروید بتاتا ہے. اگر ڈائٹ ہماری صحیح ہے اور لیکن مل نہیں تیاگ رہے ہیں تو ہم کو آنند نہیں آتا, یا پسینہ نہیں نکلتا ہے, یہ لوگ اس پریشرم میں ہی کرتے ہیں تو آنند نہیں آتا ہے, یا شانتی نہیں ملتی, شریر میں بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن یہ چاروں چیزیں جو ہے کرشن کے لیے لائیں سننا, یہ ہمارے ڈائٹ ہے, اور سیوا کرنا یہ ہمارا کیا ہے پریشرم ہے, سادھنا ہماری کیا دوائی ہے, اور فور ایگلیٹیشن پرنسپل کیا ہے پرہیز, جب چاروں کرتے ہیں تو سوبھاوک روپ سے ہمارے جیون سے انرتھ چلے جاتے ہیں. تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ پرچار کرنا آسان ہو جاتا ہے, نہیں تو ہم اپنے آپ کو ہی شدھ نہیں کر پا رہے ہیں, پرچار کرنا کٹھن ہو جائے گا ہمارے لیے, ہے نا. ہم دوسروں کو تو بول رہے ہیں کہ سولہ مالا کیجیے, دوسروں کو بول رہے ہیں بھگوت گیتا پڑھیے, خود ہی سولہ مالا نہیں کر رہے ہیں, بھگوت گیتا نہیں پڑھ رہے ہیں, تو اس کا کیا آپ کو پرچار پرچار میں آنند آئے گا, نہیں آئے گا. روپا جی بتاتے ایک رشی تھے, ایک گرو تھے, اپنے بچوں کو ایک ماتا لے کے جاتی ان کے پاس, بولتی میرا بیٹا جو ہے یہ گڑ بہت کھاتا ہے, ہاں یہ گڑ نہیں چھوڑ پا رہا ہے, کچھ دوائی دیجیے, کچھ بتائیے. بولتے ایک سپتاہ کے بعد آئیے, میں بعد میں بات کروں گا, میں بزی ہوں, تو بھگا دیتے. ایک سپتاہ کے بعد آتی ہے پھر اپنے بچوں کو لے کر, بولتے ہیں ہاں میں بتا دوں گا گڑ کیسے ختم کرنا ہے, بتاتے ہیں یہ ایسے کرو گے تو یہ گڑ کھانا چھوڑ دے گا. تو بولے یہ تو ٹھیک ہے گرو مہاراج, بتائیے کہ پچھلے سپتاہ آپ نے کیوں نہیں بتایا. بولے پچھلے سال میں بھی بتا تھا, کیونکہ میں گڑ کھاتا تو مجھے ہی نہیں پتا کہ کیسے چھوڑنا ہے, اگر میں بول بھی دوں گا تو پتا نہیں کیسے ہوگا کہ نہیں ہوگا, کنفرم نہیں ہے, تو پہلے مجھے چھوڑنا پڑے گا. تو ویسے ہی ہم جب تک نیموں کا پالن نہیں کریں گے, جب ہم گمبھیرتا سے اپنے اپنا علاج نہیں کرائیں گے تو دوسرے کا علاج کیسے کرا سکتے. جیسا کہ میں نے متروں کے بارے میں بتایا تھا, دو متر تھے, تو انہوں نے کیا ایک متر نے جب اپنا علاج کرا لیا تب دوسرے متر کو بتایا علاج کرا, جب لگا میں ٹھیک ہو رہا ہوں تو انہوں نے علاج کرانا پرارمبھ کروا دیا, دوسرے کو بلایا. ہمارے جیون میں ایسی ہوتا, جب تک ہم اپنے جیون میں چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں تو اس پرکار سے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کس پرکار ہم دوسروں کو آپ سہایتا کر سکتے ہیں. مان لیجیے ندی ہے, ندی میں سب لوگ بہت لوگ ڈوب رہے ہیں, آم کو تیرنا نہیں آتا, دوسرا ڈوب رہا اس کو بھی تیرنا نہیں آتا, آپ جوش میں جم کر جاؤ کیا ہوگا, جم کرنے کے بعد ایک آواز آئے گی بچاؤ بچاؤ, خود ہی بولیں گے ہم خود ہی ڈوب رہے ہیں. پہلے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا, تو پہلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس لیے یہاں بتائیں کہ جو یوگی کرشن بھاونا اپنے پورن یوگی بن چکا ہے وہ ویکتی دوسروں کو پرچار کر پاتا ہے. اگر ہماری استھتی نہیں ہے, لیکن چتن چرتا نے بتایا کہ تین پرکار کی استھتی ہوتی ہے, دو پرچارک ہوتے ہیں اور ایک ویکتی پرچار نہیں کرتا ہے, یعنی اپنے بیٹھ کے بھجن کر رہا ہے ہرے کرشن چینٹنگ کر رہا ہے, لیکن وہ کسی کو بولنے نہیں جاتا ہے کہ اس کا مہتو کیا ہے, پہلا ویکتی. دوسرا ویکتی प्रचार कर रहा है पर जब कम करता है, जब पर ध्यान नहीं उसका, खूब प्रचार कर रहा है, हरे कृष्णा चैंटिंग करो, आप भी माला करिए, लीजिए माला, जपिए जपिए, भगवान का नाम जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन वो खुद भी नहीं करता है। तो चैतन्य चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, ये दोनों उत्तम भक्त नहीं है, ये वास्तव में भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों दोनों प्रकार के लोग पूरा काम नहीं कर रहे हैं, यानी खुद भी भक्त बनना है, खुद भी अपनी साधना पर पूरी करनी है और साथ साथ में दूसरों को भी बताना है, तब उसमें शक्ति रहती है। जैसे कोई व्यक्ति खुद ही दुखी है, मान लीजिए आप कृष्ण भावना में आए हैं और खुद ही दुखी है, उदास है, कृष्ण भावना बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए, कोई व्यक्ति लेगा? बड़ा आनंद आता है उसको, इतना आनंद आता है कि पूछे मत, तो देखे बोलेगा इसमें खुद ही परेशान है। तो एक बार ऐसी घटना घटी, एक भक्त बोलने लगे कि जप करने से इतना आनंद आता है, बड़ा आसान है, इतना आनंद आता है कि हृदय खुशी से भर जाता है और कोई समस्या ही नहीं है संसार में, चैंट एंड बी हैप्पी, यही स्लोगन हमारा। तो बोलता है कि बहुत अच्छा, आपके अपनी अच्छी चीज बताई है। दूसरे दिन वो सुबह आते हैं, भक्तों को देखते हैं, सारे भक्त लोग परिश्रम कर रहे हैं, एक भक्त लगो हरे कृष्णा 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 हरे कर, को देखता देख के बोले कि चैंट बी हैप्पी आपने बोला था, ये क्या होता है, स्ट्रगल कर रहा है, रो रहा है, एक भक्त रोने लगा, हरे कृष्णा रो रहा है, बोले आपने तो कहा कि चैंट एंड बी हैप्पी है, तो ये हैप्पी हो ही नहीं रहा। तो उन्होंने बताया नहीं, ये प्रोसेस है, धीरे धीरे हैप्पी हो जाएगा, आप भी इससे से गुजरेंगे ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही है, जब तक आप अंदर से सुखी नहीं है, हम अंदर से सुखी नहीं है, तो कैसे दूसरे को सुखी बना सकते हैं, खुद सेटिस्फाइड नहीं है कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना, आपका पेट भरा नहीं है, आपने कोई चीज खाई आपका पेट खराब हो गया, मान लीजिए आपने बर्गर खा लिया पुराना सड़ा हुआ, आपका पेट खराब हो गया, हाँ वो बर्गर का पीस आपके पास पड़ा हुआ, आप किसी को देंगे? आप भी खाइए प्रभु जी, मजा आ जाएगा, मेरे को भी मजा आ रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसलिए हमारा खुद का खुद की साधना बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप देखिए, जब बोलते ना जैसे प्रचार को डकार से बताया गया, तुलना की है, जैसे आप बहुत सारा भोजन कर लेते हैं, जब पेट भर जाता है तो नेचुरली डकार आता है ना, कि डकार की एक्टिंग करनी पड़ती, नेचुरली आता है। तो वैसे जब कृष्ण अंदर गए हैं तो कृष्ण जरूर बाहर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता सबको, कृष्ण कहीं टिकने वाले नहीं है, वो चंचल है ना, कृष्ण नटखट है, वो अंदर है, अंदर आपने लेके गए, वो अंदर जरूर बाहर आएंगे, बोलना ही पड़ेगा, आप रोक ही नहीं सकते। अब देखिए ऐसा होता है हमारे जीवन में, खूब श्रवण करते हैं, खूब जप करते हैं, खूब अगर अध्ययन करते हैं तो हमको कोई रोकना मुश्किल हो जाता है। हम पकड़ पकड़ के लोगों को बताते रहते हैं, ट्रेन में, बस में, टेलीफोन में, जिसका भी फोन है उसको बताते हैं, आप जानते हैं आज मैंने ये पढ़ा था, कृष्ण अंदर गया तो बाहर आएंगे, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या बता पाएंगे लोग, बताना कठिन हो जाएगा। तो यही बात बता रहे हैं कि हमारे लिए प्रचारक के लिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं, पांच चीजें जरूरी हमारे लिए। और श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, छठवें स्कंद के चौथे अध्याय के 44वें श्लोक में हमारे जो गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बताया, जो भगवद गीता मैराथन चल रहा था, किस प्रकार जो प्रजापति थे वो तपस्या कर रहे थे, भगवान के सामने तपस्या कर रहे थे संसार में सभी लोगों को सुखी बनाने के लिए। तो भगवान प्रकट होकर उनके सम्मुख बोलते हैं कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, क्यों प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप संसार की भलाई के लिए, संसार में विश्व शांति के लिए आप प्रयास कर रहे हो, यानी जो प्रचार करता है भगवान सबसे जल्दी उससे खुश होते हैं। भगवद गीता 18 अध्याय में 68, 69, 70 नंबर श्लोक में ये बता रहे, तीनों श्लोक में भगवान बोलते हैं जो मेरे इस गुहितम ज्ञान को दूसरे को जो वितरण करता है मेरा सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति है। अगले श्लोक में बोलते हैं इससे ज्यादा कोई प्रिय ना तो हुआ है ना कभी होगा। और अगले श्लोक में बोलते हैं जो इस गुहितम ज्ञान को पढ़ता है वास्तविक रूप से वो मेरी पूजा करता है, कैसे, अपनी बुद्धि से। अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, हर बार जरूरी नहीं है भगवान की पूजा करने के लिए अगरबत्ती की जरूरत है, भगवान की पूजा करने के लिए बुद्धि से भी कर सकते हैं, मन से भी पूजा कर सकते हैं। तो इस ग्रंथ का अध्ययन करना भी क्या है, भगवान की पूजा करना है, कैसे, कैंडल से, अगरबत्ती से, बुद्धि से पूजा करना, यानी आप रोज अगर एक भगवद गीता का श्लोक भी पढ़ते हैं तो वास्तव रूप में भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, ये भगवान बताते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रचार में कष्ट भी होता है, ऐसा नहीं कि प्रचार बड़ा आसान है कि आप प्रचार करने गए और सब लोग आपको आइए जी बैठिए जी सब बुला रहे हैं, آپ نے کسی کو بولا سولہ مالا کرو، ہاں جی سولہ مالا کروں گا، ہاتھ سے بھگوت گیتا پڑھو، روز بھگوت گیتا پڑھوں گا، ایسا کوئی کرتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بولتا تم کون ہوتے بولنے والے مجھے، ایسا بھی لوگ ملتے ہیں، تمہاری بات کیوں مانوں نہ، تم کر رہے ہو نا بس خوش رہو، مجھے مت بولو، ایسے بھی لوگ ملتے ہیں۔ تو ایسے چیتن چرتامرت میں ورنن ہے، جب چیتن مہاپرش چنتت ہو رہے ہیں، ہریداس ٹھاکر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بولتے ہیں سنسار میں لوگوں کا کلیان کیسے ہوگا، سنسار میں سارے دکھی ہیں، سب لوگ بھوگ ولاس میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیسے کلیان ہوگا، ہری نام کوئی لینا نہیں چاہتا۔ تو ہریداس ٹھاکر کیا بول رہے ہیں کہ چنتا مت کیجیے، ہم پرچار کریں گے، میں پرچار کروں گا جا کر، نتیانند پربھو اور ہم سب مل کے پرچار کریں گے۔ تو بھگوان چیتن مہاپربھو ان سے پرسن ہو جاتا ہے، کیوں کیوں پرسن ہو گئے، کیونکہ اپنی تو چنتا کر ہی رہے ہیں ساتھ، اپنا تو جب کرتے ہی تھے، ساتھ ساتھ میں کیا چاہ رہے ہو، سنسار میں پرچار کرنا چاہتے ہیں، بھگوان کی چنتا وہ کم کرنا چاہتے ہیں۔ بھگوان اپنے دھام میں بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ساری جیواتما جو سنسار بھوتی سنسار میں جو بھٹکی ہوئی ہیں واپس بھگوان کے پاس چل رہے ہیں۔ ایک پتا کے کئی پتر ہیں، اور مان لیجیے کئی پتر بچھڑ گئے ہیں پتا سے، ایک پتر گھر واپس آ جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ میرے پتا یہ گھر آ گیا۔ تو جب وہ پتر جاتا ہے اپنے دوسرے بھائیوں کو لینے کے لیے، کھوجنے کے لیے جاتا ہے، تو پتا کیا کرتے ہیں، اس کی پوری مدد کرتے ہیں، اس کے لیے بولتے ہیں گاڑی لے جاؤ، یہ لے جاؤ، وہ لے جاؤ، جو مدد کی لے جاؤ، لیکن میرے بیٹے کو واپس لے آؤ۔ جب وہ لینے جاتا ہے اپنے بھائیوں کو واپس لے کر آتا ہے، ایک بھائی کو بھی لے کر آتا ہے، تو پتا جی پرسن ہو جاتے ہیں، یہ میرا سب سے اچھا بیٹا ہے، کیونکہ انیہ بھائیوں کو لے کر آ رہا ہے۔ تو بھگوان یہی بولتے ہیں کہ میں میرے سب سارے جیواتما میرے سناتن انش ہیں، تو ہم تو اگر بھگوان کے پاس آ چکے ہیں تو ہمارا کرتویہ کیا ہے، انیوں کو بھی لے کر آئیں، ایسا نہیں ٹھیک ہے ہم آ گئے ہیں آپ سے پراپرٹی مل گئی ہماری انجوائے کریں گے، یہ ہم چاہیں گے دوسروں کو بھی لے کر آئیں۔ اور بھگوان ہمیشہ دکھی رہتے ہیں، تو بھگوان کو پرسن کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، پرچار کرنا۔ اور بتاتے ہیں کہ سب سے تیزی سے اگر بھکتی میں آگے بڑھنا ہے تو سب سے تیزی سے بڑھنے کا طریقہ یہی ہے، پرچار کرنا بہت تیزی سے، کیونکہ ایک ایسا سمے ہوتا ہے جب بھگوان کے بارے میں جب بولتے ہیں، وہ ایسا سمے ہے جب آپ سینس گریٹیفیکیشن زیرو ہوتا ہے آپ کا، آپ اندر ترپتی کر ہی نہیں سکتے، من میں کوئی دوسرا وچار آ ہی نہیں پائے گا، جب آپ کرشن کے بارے میں بول رہے ہیں کسی کو، من میں کوئی وچار آتا ہی نہیں، آ ہی نہیں پائے گا، کیسے آئے گا، دوسرا وچار آئے گا تو بول نہیں پائیں گے۔ جیسا آپ نے انوبھو کیا ہوگا، جب بک ڈسٹریبیوشن کرنے جاتے ہیں، لوگوں کو بک دیتے ہیں، تو آپ کے من میں کچھ وچار آتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کچھ چنتا ہوتی ہے، جب آپ نہیں بولتے ہیں تب یاد آتا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، تھک گئے ہیں، کتنی تھکان ہونے کے بعد یہ بک ڈسٹریبیوشن کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے رہتے۔ تو اس پرکار دیکھا گیا ہے کہ بھگوان کے پرچار میں جو لگا ہوا ویکتی ہے وہ واستوک روپ میں سمادھی میں رہتے ہیں، لگ بھگ چاہے وہ چھوٹا پہلا بھکت ابھی آیا ہو، اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہوگا، وہ پہلی بار بک ڈسٹریبیوشن کر رہا ہوگا، ایک بھگوت گیتا بھی دیتا ہے، اس کتنا آنند پردان پراپت ہوتا ہے، کیوں آنند پراپت ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا، اپنے بچھڑے بھائی کو کیا کر دیا، ایک بھگوت گیتا دے دی ہے، راستہ بتا دیا واپس آنے کا، وہ نہیں مان رہا ہے، بول رہا میری یاداشت چلے گی، میں نہیں جانتا تم کون ہو، نہ تم نہیں جانتے پر میں جانتا ہوں تم کون ہو، تو میرے پتا کے بیٹے میرے بھائی ہو، یہ بھگوت گیتا لو، یہ ایڈریس لکھا ہے، واپس آ جاؤ۔ بولتا ٹھیک ہے، جب میں کنفرم ہو جاؤں گا کہ سچ مچ میرے بھائی ہو، میرے پتا تو واپس ہوں گے، بولتے کوئی بات نہیں، اس میں ایڈریس لکھا ہے، پڑھتے رہو گے سارا کلیئر ہو جائے گا۔ اس پرکار وہ پڑھتے 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 واپس وہ بھگوان کے دھام آ جاتا ہے، بھگوان کے پاس ہو جاتا ہے۔ اور بھگوان کیونکہ بھگوان ہمیشہ چنتت رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، تو جو بھی ویکتی پرچار کرنے جاتا ہے، پوری گرو پرمپرا چیتن مہاپربھو شیلا پربھوپاد اور بھگوان سوئم پوری طرح اپنی لائٹ فوکس کر دیتے ہیں، اسی طرح کرپا دے دیتے ہیں، یہ دیکھو یہ جا رہا ہے پرچار کے لیے، اسے پوری مدد ملنا چاہیے، پورا شیلٹر ملنا چاہیے، تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، پوری رکشا ہوتی ہے اس کی، تو اتنی کرپا ملنے کے کارن کیا کرتا ہے، وہ بھی تیزی سے انتی کرنے لگتا ہے۔ جیسے شیلا پربھوپاد جی ایک اسٹوری بتاتے ہیں چھوٹی سی، اس میں بولتے ہیں ایک ویکتی اپنے پتا کو چھوڑ دیتا ہے، بولتا ہے میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گا، میں آپ پر ڈپینڈ ہو کے رہنا نہیں چاہتا ہوں، میں اپنے پیروں پیروں پہ کھڑا ہو کے دکھاؤں گا آپ کو۔ پتا جی بولتے ہیں دیکھو بیٹا باہر بہت دقت ہے، آپ رہ نہیں سکتے، سماج میں رہنے کے لیے آپ کو پہلے میچیور بننا پڑے گا، تھوڑا اسٹرانگ بننا پڑے گا، پھر کچھ نہیں، میں اکیلے کر لوں گا، بولتے ہیں چلے جاتے ہیں، چھوڑ کے جب وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو عمر زیادہ نہیں رہتی، 12-13 سال کے رہتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو دوستوں سے جن کو پیسہ اپنے پتا جی کا خوب لٹایا تھا ان سے مانگتے ہیں تو کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے، کھانے کے لیے دقت ہوتی، کوئی نوکری مانتے ہیں نوکری نہیں دیتے، کیونکہ ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں رہتا، ایسا پریشان ہتاش ہو کے کیا کرتا ہے، वो हर दुकान पर जाता है, हर शॉप पर जाता है, हर व्यक्ति के पास जाता है मदद मांगने के लिए, कुछ मदद कर दो, मैं 5 दिन से भूखा, मेरे कुछ खाया नहीं है। तो एक शॉप में जाता है, मुर्गी पालन केंद्र में जाता है, वहाँ बोलता है मैंने कुछ भी नहीं खाया है, 5 दिन हो गया, मैंने पानी पी रहा हूँ, अभी गंदी गंदी पानी पी रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ नौकरी दे दो, मैं कुछ भोजन करना चाहता हूँ। तो बोले तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है? तो बोले मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, 13 साल का हूँ। बोलते फिर नौकरी नहीं मिलेगी। बोलते मैं भूखा हूँ, कुछ तो दया करो। तो मैं दया नहीं आती मेरी स्थिति देखे, 5 दिन से भूखा हूँ। बोले ठीक है, ये मुर्गियाँ जितनी हैं इनको दाना खिलाओ, मुर्गियाँ जब दाना खा लेंगी, दाना खा के चले जाएंगे अपने अपने पिंजरों में, जो दाना बच जाएगा वो खा लेना, ये तुम्हारी सैलरी है, ये तुम्हारा भोजन है। तो बेचारा दुखी हो जाता अंदर से, लेकिन अभी भी अहंकार उसके अंदर, वापस नहीं जाऊंगा बोलते, कुछ भी हो जाए यहीं रहूंगा, मर जाऊं पर वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला था अपने पिताजी को मैं अपने अकेले मैनेज करूंगा, लोग हंसेंगे, पिताजी हंसेंगे, ऐसा सोचते हैं, अपने आप को अहंकार को झुकाता नहीं, दाना खाता है, मुर्गी को दाना खाकर बीमार होते जाते, बीमार होते जाता है, और धीरे धीरे इतना बीमार हो जाता है कि खड़ा नहीं हो पाता है, कुछ क्षणों के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद गिर जाता जमीन पर, उठ नहीं पाता है। लेकिन पिताजी छोड़ते नहीं है, पिता ने देखा कि मेरा बेटा छोड़ के चला गया है, कोई बात नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पिताजी नहीं छोड़ते। हम सब अपने माँ बाप को भूल सकते हैं पर माँ बाप नहीं भूलते, तो पिता भी यही करते हैं, पिताजी कहते हैं नौकर भेजते हैं, बोले जाओ मेरे बेटे को एक एक क्षण का, एक एक समय की सूचना, एक क्षण की सूचना देना, तो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है। जब उसका बेटा गिर जाता है जमीन पर, तब जो नौकर रहता है अपने पिताजी को बताता है कि जल्दी आओ, आपका बेटा जमीन पर गिर चुका, अब उठने लायक नहीं है। अब उसके मुख से पिताजी के शब्द निकल रहे हैं, पिताजी पिताजी चिल्ला रहे हैं, जल्दी आओ। तो पिता क्या करते हैं, ये शब्द सुनते ही तो पिता का हृदय एकदम दुखी हो जाता है, दुख से भर जाता है, अपनी गाड़ी निकालते हैं, बोलते हैं मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा, जबरदस्ती लेकर आऊंगा, अगर नहीं भी आएगा तो अपनी गाड़ी निकालते हैं, है ना, गाड़ी निकालते हैं और तेजी से दौड़ते हुए जाते हैं। और इसको बेटे को नौकर बताता है कि देखो तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, तुम्हारे पिताजी तुमको भूले नहीं थे, रोज मैं तुम्हारे पर नजर रखता था। बोलते अच्छा, मेरे पिताजी रोज नजर रखने के लिए आपने कहा? बोलते हाँ, बहुत प्रेम करते हैं। उठो, उठाते उसके बेटे को, तो खड़ा हो जाता है सुनकर, मेरे पिताजी मुझे लेने आ रहे हैं। तो चलता, वो एक कदम चलता था और वो गाड़ी से आ रहे तो 10 कदम चलते थे, और जब नजदीक पहुंचते हैं तो वो गाड़ी से लगभग जंप कर जाते हैं अपने बेटे के लिए और गले लगा बहुत रोते हैं। बोले तो मैं रोज याद करता, तुम्हें एक बार भी याद नहीं आती थी मेरी, एक बार भी याद नहीं, रोज मैं रोता था तुम्हारे लिए, ऐसा बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारी स्थिति वैसी है, हम सब भगवान से दूर चले गए थे, छोड़कर आ गए संसार में, बहुत ही सुंदर एंजॉय करने के लिए, हम सोचते हैं हम एंजॉय करेंगे, कहाँ जा रहे हैं? दुखालय एंजॉय करने के लिए, सुखी रहने के लिए, और यहाँ पर क्या खा रहे हैं? बर्गर पिज्जा यानी मुर्गी के दाने, और बोल रहे हम सुखी हैं, रोज बीमार है, दुखी है, कमजोर है। भगवान हमारे जो परम पिता, उन्होंने क्या किया? प्रभुपाद जैसे परमात्मा भगवान के जो परम भक्त है उनको भेजा यहाँ पर, है ना, उनके जैसे नौकर जैसे बताया गया था, नौकर जाओ और जाके देखो मेरे जो संतान है वो क्या कर रही है संसार में, उनको जाओ उनको वापस भी लेकर आओ। तो वो हमारे कह के बता रहे हैं वापस चलो, है ना, वो इंतजार कर रहे हैं आपके पिता। ऐसा सचमुच बृहद भागवतम वर्णन होता है कि सारे जो पुण्य आत्माएं जो भगवान के साथ निवास कर रही हैं भगवान के धाम में, वहां से देख रही हैं कि कब वापस आएंगे लोग, वहां से कि क्या कर रहे हैं, वापस क्यों नहीं आना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं हमारा। तो ये जब तक मूड नहीं होगा प्रचारक का, ऐसा नहीं सोचता कि सारे लोग संसार में जब भटक चुके हैं वापस लाना है और हम भी भटक चुके खुद भी वापस जाना है, ऐसा नहीं सोचते हैं, तब तक हम भगत भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही इसमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बता रहे हैं। एक भक्त जो होता है वो जब परमात्मा का कंक्लूजन बताते हैं, परमात्मा का अपने हृदय में जब ध्यान करता है और उसको आनंद प्रदान होता है तो वो समझ जाता है कि सुख और दुख क्या है। ठीक है, दुख क्या है संसार में, दुखी क्यों है संसार के लोग, बताइए, रिविजन आपसे कराते हैं, भोग विलास के लिए भाग रहे हैं और भगवान से दूर हैं इसलिए दुखी, और सुखी होने का तरीका क्या है, शांति सूत्र क्या है, भोक्ता रहे यज्ञ तपस्याम, सबके मालिक हैं और सर्वेते सुख, तो ऐसा जब हम मानते हैं तो हमें शांति मिलती, सुख मिलता है, ये बात बताएगी। दूसरा, एक इस प्रकार जब व्यक्ति जान जाता है तो क्या कहलाता है, पर दुखा दुखी, दूसरे को दुखी देखकर क्या हो जाता है, खुद भी दुखी हो जाता है, तो दुखी देखकर क्या होता है, दुख होने के कारण उसका क्या प्रचार करता है। तो प्रचारक के लिए क्या मुख्य मुख्य कार्य होना चाहिए, चार चीजें पांच चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई थी। अच्छा बताइए, मैं पूछता हूँ इनडायरेक्टली, कृष्ण की लीलाएं प्रचारक के लिए क्या है? दायित्व है, ठीक है, और सेवा, परिश्रम, साधना, मेडिसिन दवाइयां, ठीक है, फोर डिग्री प्रिंसिपल, परहेज, और अनर्थ क्या है, उसे मल त्याग है, अपने जीवन से सब मल त्यागना चाहिए। तो ये वास्तविक जीव दया है। लेकिन जीव दया क्या हम लोग कर सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था में दया कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जीव दयक होने के लिए उन्नत स्तर पाना पड़ेगा, मध्यम अधिकारी के स्तर पाना पड़ेगा। फिर हम लोग फिर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रचार करो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आदेश की आवश्यकता है। तो कितने आदेश दिया गुरु ने, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, हमारा क्या गुरु है तारक देव, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया कि सभी लोग को प्रचार करना है, इसलिए हमें प्रचार करना है, ठीक है। तो प्रचार करने का उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या रहता है, कि हमें बिछड़े हुए अपने भाइयों को वापस किससे मिलाना है, कृष्ण से मिलना। इससे कौन प्रसन्न होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान विशेष कृपा करेंगे। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 68, 69, 70 लोगों को बताया गया कि हमें प्रचार करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो, ठीक है। इसलिए आपने भगवद गीता का किया। और जो हमें कष्ट आता है हमारे जीवन में प्रचार के दौरान, वो कष्ट तो आएंगे, लेकिन कष्ट हमारे लिए क्या एक परीक्षा है ना। कष्ट जो हमारे जीवन में आता है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, बहुत जोरों शोरों से प्रचार कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, तो उस समय ना कई जो स्मार्ट ब्राह्मण थे, तो उन्होंने देखा कि ये प्रचार तेजी से कर रहे हैं, हमारा मार्केट खराब हो जाएगा। उन्होंने कि आप पुलिस को 50,000 रुपये दिए मारने के, उस समय 50,000 रुपये दिए कि बोले इनको मरवा दीजिए। तो पुलिस उनको मारने नहीं आई, उनको बोले हमको ऐसे ब्राइब दिया गया है, हमको पैसा दिया गया है कि आपको मारने के लिए, पर आपको नहीं मारेंगे, आप बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, भी कष्ट आएंगे, लेकिन कष्ट को सहन करना पड़ेगा। कष्ट सहन नहीं करेंगे तो भगवान के प्रिय नहीं बनेंगे, बिना कष्ट के कृष्ण नहीं बनते। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की। आप लोगों का किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी कोई प्रश्न नहीं? प्रश्न दो अवस्था में नहीं होता, एक तो या पूरा समझ में आ गया या पूरा नहीं। कौन सा वाला है, पूरा समझ में आ गया? प्रश्न पूछूं मैं, पूछूं कौन सा अध्याय का श्लोक था ये वाला, कौन सा श्लोक? चलो ये तो याद है।